यूनिट सेकंड पाठ सात अनुशासन का अनुरक्षण मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन विद्यालय अनुशासन एवं अनुशासनहीनता। अनुशासन विद्यार्थी व्यवहार सदैव विद्यालय अथवा शिक्षा से संबंधित शिक्षकों एवं प्रशासकों के चिंतन का विषय रहा है। यह समस्या भारत की ही नहीं सार्वभौमिक है। औद्योगिक व तकनीकी विकास ने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को अति तीव्र गति प्रदान की है। इसका समाज और उसके ही अंग एक किशोर युवा वर्ग को चिंतन एवं व्यवहार पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। अतः इससे समाज के पुरातन मूल्यों व परंपरागत व्यवहारों से जुड़े रहने में आकुलाहट की पुष्टि होती है। इस स्थिति में विद्यालयों में बढ़ती छात्र संख्या और समान चिंतन वाले छात्रों के एक साथ मिलने से परम्परा में विद्यालयों के नियमों से मुक्ति के लिए जब भी कोई किसी घटना चाहे वह शिक्षक छात्र व्यवहार से संबंधित हो अथवा विद्यालय में अपर्याप्त संसाधनों को लेकर हो अथवा छात्रों के अधिकारों को लेकर हो, तब अचानक यह छात्र आक्रोश प्रशांत ज्वालामुखी के लावा की भांति फूट पड़ता है, जिससे समग्र विद्यालय व्यवस्था, शैक्षिक पर्यावरण, शिक्षक विद्यार्थी, प्रशासक विद्यार्थी संबंधी में दरार पड़ जाती है और संदेह की स्थिति समग्र विद्यालय पर्यावरण में होने लगती है। अतः जितना शीघ्र हो इस समस्या का समाधान ज्ञात किया जा सके उतना ही श्रेयस्कर है। वर्तमान पारंपरिक शब्द अनुशासन अंग्रेजी के शब्द डिसिप्लिन का रूपांतरण है, जो लैटिन शब्द डिसाइपुलस से लिया गया है। इस शब्द का अर्थ है सीखना, अर्थात सीखने की परिस्थिति, जो कालांतर में डिसिप्लिन के रूप में व्यक्त की जाने लगी। आधुनिक युग में डिसिप्लिन का अर्थ व्यवहारों में नियमबद्धता से लिया जाता है। यह नियमबद्धता आत्म नियंत्रण व समुचित प्रशिक्षण से आती है, जिससे समाज द्वारा अस्वीकृत मूल्यों का अनुसरण भी सम्मिलित है। व्यापक दृष्टि से अनुशासन में व्यक्ति के व्यवहार का समाजीकरण, सहयोगपूर्ण ढंग से कार्य करने व रहने का ढंग तथा समूह के लिए व्यक्तित्व हितों का त्याग भी सम्मिलित होता है। नियमानुसार आचरण को अनुशासन कहते हैं। विद्यालय अनुशासन का अर्थ मीनिंग ऑफ स्कूल डिसिप्लिन। विद्यालय अनुशासन का अर्थ विद्यालय के नियमों के अनुरूप आचरण से लिया जाता है। यह आचरण किसी भी समाज की उसकी सांस्कृतिक प्रणाली से संबद्ध होता है। इस प्रकार विद्यालय के विद्यार्थियों से अपेक्षित व्यवहार उस समाज की अपेक्षित व्यवहार प्रणाली से प्रभावित होती है। कार्विन तथा मेडलर अनुशासनहीनता को वह परिस्थिति मानते हैं जिसमें व्यक्ति की आवश्यकताओं तथा समूह या अधिकृति जो उसका प्रतिनिधित्व करती है की अपेक्षाओं के विरोध या टकराव के कारण होता है। अनुशासन किसी भी राष्ट्र, समाज अथवा संगठन के लिए आवश्यक है। इसी के माध्यम से व्यक्ति की भावनाओं और शक्तियों को नियमबद्ध कर दक्षता और योग्यता लाई जा सकती है तथा लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। इसके विपरीत अनुशासनहीन समाज व संगठन अकुशलता तथा पतन की ओर चला जाता है। अतः फिर चाहे कोई भी संगठन क्यों न हो, भले ही विद्यालय ही क्यों न हो, उसके उत्थान हेतु अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहना होगा। विद्यालयी अनुशासन को बनाए रखने के लिए जो दृष्टिकोण लिए गए हैं वो मुख्य प्रकार हैं। पहला, एक दृष्टिकोण के अनुसार नियमों द्वारा विद्यार्थियों को विद्यालय के अनुशासन में रखना होता है। इस दृष्टिकोण को पोषित करने वाले कठोर अनुशासन में पक्षधर है, जिससे संपूर्ण शैक्षिक इतिहास भरा पड़ा है। वे अनुशासन का अर्थ ही दंड देना मानते हैं। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत ही नहीं संपूर्ण संसार में विद्यालयी अनुशासन बनाए रखने के लिए कठोर से कठोर नियम बनाकर लागू किए जाते थे। उदाहरण, इंग्लैंड के प्रसिद्ध विद्यालय ईटन के हेडमास्टर डॉक्टर कीट द्वारा अनुशासन भंग करने के कारण सारी रात एक विद्यार्थी के समूह द्वारा को पीटा जाता रहा। दूसरा दृष्टिकोण, इसके विपरीत, बालक को स्वयं नियंत्रण के द्वारा अनुशासित जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करने से संबंध हो रखता है। दूसरे दृष्टिकोण के पोषक यह मानकर चलते हैं कि अनुशासनहीनता बाह्य सामाजिक पर्यावरण तथा बालक के व्यक्तित्व के मध्य परस्पर संपादित है। बालक अपने में न अच्छा होता है और न बुरा, अच्छे या बुरे व्यक्तियों का संसर्ग ही उसे बुरा बनाता है। अतः व्यक्ति के दोषों का परिमार्जन कर उसे वांछनीय मार्ग पर लाया जा सकता है। अधिकांश प्रगतिशील शिक्षाविद इसी दृष्टिकोण के पक्षधर हैं। वे मानते हैं कि जितने कठोर नियम अनुशासन बनाए रखने के लिए बनाएंगे, उतने ही अधिक विद्यार्थी यानी कि बालक के अनुशासन की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यही नहीं, इस प्रकार के नियम और विधान बालक के स्वाभाविक विकास में अवरोध डालेंगे। आवश्यकता इस बात की है कि विद्यालयों में उचित अधिगम परिस्थितियां सृजित हों, जहां बालक की स्वाभाविक आवश्यकताओं के साथ साथ विद्यालय संगठन की अपेक्षाओं की भी पूर्ति हो। प्रसिद्ध अंग्रेज शिक्षा शास्त्री तथा समर हिल स्कूल के प्रणेता A.S. नील 1960 का दृष्टिकोण है कि विद्यालय बालक को उसकी समग्रता के साथ समाहत करने वाले होने चाहिए। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि विद्यार्थी पाठ पढ़ने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हों, उन्हें बाध्य न किया जाए। वे जब चाहें तब विद्यालय आवें तथा जब चाहें तब जावें। अधिकृतियों से बालक की आवश्यकता कहीं अधिक ऊपर है। नील के अनुसार बालक जब प्रसन्नता के साथ कार्य करेगा उसे आनंद आएगा और जब अनुचित व्यवहार का कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा। अतः सही अनुशासन के लिए नियमों की अपेक्षा हमारे पाठ्यक्रम प्रवृत्तियों और शिक्षक की तैयारी पर ध्यान देना कहीं अधिक आवश्यक है। लगभग नील के समान ही रविंद्रनाथ ठाकुर की भी छात्र अनुशासन के संबंध में यही मान्यता थी। एक घटना इस प्रकार है। रविंद्र बाबू शांति निकेतन में वृक्ष के नीचे बालकों को पढ़ा रहे थे, परंतु कुछ बालक रविंद्र बाबू के पास न बैठकर पास ही वृक्षों पर चढ़कर खेल रहे थे। एक आगंतुक ने जब उनसे पूछा कि क्या कुछ छात्र ही आपसे आपके पास पढ़ रहे हैं और शेष बिना आपकी चिंता किए वृक्षों पर जा चढ़े हैं, ठाकुर ने उत्तर दिया कि मुझे तो इसी बात का खेद है कि ये शेष जो मेरे पास पढ़ रहे हैं वे भी प्रकृति की गोद में पढ़ने के लिए क्यों नहीं गए। कदाचित उन्हें प्रकृति के पाठ से मेरा पाठ अधिक पसंद है। गांधी जी भी लगभग इसी विचारधारा के थे। कठोर अनुशासनवादी शिक्षा की उपलब्धि के लिए कठोर अनुशासन आवश्यक मानते हैं। उनके अनुसार कठोर और नियंत्रित विद्यालयी परिस्थितियों में ही मानसिक विकास की प्रक्रिया संपन्न हो सकती है। इसी विचारधारा के समर्थक जॉन लॉक के अनुसार अंतिम मानवीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें आत्म अनुशासन व आत्म नियंत्रण रखना व उन इच्छाओं का दमन कर तर्कसंगत व्यवहार करना आवश्यक है। अनुशासन पर दार्शनिक दृष्टिकोण से भी विचार किया गया है। एडम ने विभिन्न दर्शनों के आधार पर तीन प्रकार की विचारधाराओं को उल्लेख किया है। पहला दमनात्मक अनुशासन, दूसरा प्रभावात्मक अनुशासन, तीसरा मुक्तियात्मक अनुशासन। दमनात्मक अनुशासन पूर्व में वर्णित कठोर अनुशासन व नियमबद्ध विद्यालयी अनुशासन से मिलता जुलता है। आदर्शवादी दार्शनिक विचारधारा ने इस दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया है। मनोवैज्ञानिकों ने कठोर अनुशासन या दमनात्मक कदमों का विरोध किया है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि प्रत्येक अनुशासनहीनता की पृष्ठभूमि में कोई घटना या कारण होता है। व्यक्तिगत असंतोष, तनाव, कुंठाएं उन परिस्थितियों में प्रति विद्रोह पैदा कर देती हैं, जिन्हें वह असंतोष का अथवा तनाव का कारण समझता है। यह विद्रोह की भावना उसके व्यवहार में अनुशासनहीनता को जन्म देती है। पारिवारिक और सामाजिक कारण भी बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, जिसे वह विद्यालय में प्रतिक्रिया स्वरूप प्रदर्शित करता है। अतः अनुशासन बनाए रखने के लिए अनुशासनहीनता के कारणों की पृष्ठभूमि को जानना परम आवश्यक है। कारणों से पूर्व अनुशासनहीनता के प्रकारों पर भी दृष्टिपात करना समुचित होगा। अनुशासनहीनता के प्रकार, टाइप्स ऑफ इनडिसिप्लिन। विद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा होने वाले विविध प्रकार की अनुशासनहीनता की आम घटनाएं इस प्रकार की हैं: विद्यालय अधिनियमों की अवमानना, विद्यालयों के नियमों को न मानना, शिक्षकों की अवमानना, विद्यालय में विलंब से आना, नियम विरुद्ध व्यवहार, विद्यालय में प्रार्थना सभा व कक्षाओं में शोर करना, विद्यालय संपत्ति को नुकसान पहुँचाना, भद्दे मजाक या गाली गलौज करना, हड़ताल आदि करना, साथियों के साथ या शिक्षकों के साथ मारपीट, परीक्षा में नकल, विद्यालय शुल्क अदा न करना आदि। उपयुक्त अनुशासनहीनता की घटनाओं को अलावा और भी व्यापक स्तर पर अनुशासनहीनता पर अनुशासनहीनता की घटनाएं शिक्षा जगत में देखी जाती हैं। इनमें केवल विद्यार्थी ही नहीं शिक्षक और प्रशासक भी प्रभावित हो जाते हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 1958 से 1964 के मध्य होने वाली अनुशासनहीनता की 1237 घटनाओं को 554 विश्वविद्यालयों, 67 कॉलेजों तथा 513 विद्यालयों से एकत्रित किया है। इन अनुशासनहीनता की घटनाओं को मुख्य रूप से निम्नलिखित 5 भागों में विभक्त किया गया है। पहला, अकादमिक अनुशासनहीनता संबंधी। दूसरा, शिक्षकों में अपर्याप्त संबंध। तीसरा, अयोग्य शिक्षक विद्यालय परस्पर संबंध। चौथा, राजनैतिक संगठनों के हस्तक्षेप संबंधी। तथा पांचवा विविध समस्याएं। इन बिंदुओं का विस्तृत वर्णन इस प्रकार है। पहला, शैक्षिक अनुशासनहीनता संबंधी। शैक्षिक अनुशासनहीनता की 416 घटनाएं हुई जिसका प्रत्यक्ष अकादमिक कारण थे। यदि प्राचार्य व शिक्षक समय रहते उचित कदम उठा लेते तो लगभग एक तिहाई अनुशासनहीनता की घटनाओं को दूर किया जा सकता था। इससे यह तथ्य भी स्पष्ट होता है कि आज के विद्यार्थी अकादमिक शिष्टाचार शिक्षक से अकादमिक तैयारी की अपेक्षा करते हैं, जिसके लिए विद्यार्थी से अधिक शिक्षक और प्रशासन जिम्मेदार हैं। दूसरा, शिक्षकों में अपर्याप्त संबंध। इस संदर्भ में 230 घटनाएं रिकॉर्ड की गईं। इन घटनाओं के पीछे शिक्षक व अन्य सहायक स्टाफ की कमी प्रमुख अनुशासनहीनता के कारण थे। ये घटनाएं प्रशासनिक कारणों से हुई हैं। तीसरा, दोषपूर्ण शिक्षक विद्यार्थी परस्पर संबंध। इस प्रकार की अनुशासनहीनता की घटनाएं सीधे शिक्षकों के विरोध में हुई। इनके पीछे शिक्षकों व विद्यार्थियों के मध्य अवांछित व्यवहार थे। इनमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों पक्ष दोषपूर्ण थे। चौथा, राजनीतिक संगठनों के हस्तक्षेप संबंधी। इस प्रकार की 112 घटनाएं ऐसी थी जिसमें राजनीतिक पार्टियां प्रत्यक्ष रूप से इन घटनाओं के पीछे थीं। इनके अलावा 52 घटनाएं ऐसी थी जो राजनीतिक प्रयासों या हस्तक्षेप के कारण हुई। पांचवा, विविध। इन घटनाओं के अंतर्गत 83 घटनाएं शुल्क को लेकर, 80 घटनाएं अनुशासन संबंधी निर्णयों के विरोध में और 61 स्टाफ के स्थानांतरण के कारण, 44 शैक्षिक कठिन स्तर के कारण, 28 घटनाएं व्यवस्था को लेकर, 24 परीक्षा तिथियों आगे बढ़ाने के लिए तथा 15 लिंग संबंधी घटनाओं को लेकर थी। यदि इन घटनाओं का विश्लेषण करें तो 1237 घटनाओं में से 646 घटनाएं आधे से अधिक अकादमिक कारणों व स्टाफ की कमी के कारण हुई। शिक्षक विद्यार्थी दोषपूर्ण संबंधों को लेकर मात्र 100 घटनाओं में भी विद्यार्थी दोषी नहीं है। इस प्रकार अनुशासनहीनता की आधे से अधिक घटनाओं को उचित प्रशासनिक निर्णयों व शिक्षकों के स्वयं के दायित्व के निर्वाह करने से दूर किया जा सकता था। अनुशासनहीनता के अनुमानित कारण। विद्यार्थी अनुशासनहीनता में अनेक कारण हो सकते हैं। इस संदर्भ में देश के शिक्षाविदों, राजनीतिज्ञों व चिंतकों की राय नियमानुसार है। पहला, प्रसिद्ध शिक्षाविदी तथा विचारक केजी सैयदन के अनुसार विद्यार्थी अनुशासनहीनता के प्रमुख चार कारण हैं। पहला, विद्यार्थियों में असंतोष की भावना। दूसरा, अध्ययन में अपर्याप्त रुचि का अभाव। तीसरा, विद्यालयों तथा कॉलेजों में विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या। तथा चौथा, राजनीतिज्ञों तथा अशोभनीय उदाहरणों का प्रस्तुत करना। भारतीय सेना के भूतपूर्व जनरल करियप्पा के अनुसार बढ़ते हुए विद्यार्थी अनुशासनहीनता के मुख्य कारण हैं। पहला, वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। दूसरा, शिक्षकों में नेतृत्व का अभाव। तीसरा, बढ़ती आर्थिक कठिनाइयां। तथा चौथा, समाज में व्याप्त सामान्य आदर्शवादिता का अभाव। भूतपूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री VKR V राव के अनुसार विद्यार्थी अनुशासनहीनता के कारण सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक समस्याओं से प्रभावित है, जिसका अध्ययन कर कारणों का विश्लेषण किया जाना चाहिए। महात्मा गांधी के सहयोगी निर्मल कुमार बोस द्वारा हिंदुस्तान टाइम्स में लिखे लेख के अनुशासनहीनता के 3 प्रमुख कारण बताए गए हैं। पहला, छात्रों में यह भावना कि कोई भी परिवर्तन सरकार ही ला सकती है। दूसरा, विद्यार्थी समाज में आदर्शवादिता का हास। तथा तीसरा, स्वयंसेवी संस्थाओं का इस दिशा में पहल में हास। इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन 1986 में लिखे लेख में ब्राफी तथा सवर्टसन मानते हैं कि अनुशासनहीनता के मूल में 2 कारण हैं। पहला, विद्यार्थियों के समक्ष अस्पष्ट मूल्य होने के कारण वे आंतरिक द्वंद्व की स्थिति में अपने को पाते हैं। परिणाम स्वरूप वह व्यवहार कर बैठते हैं जो विद्यालय नियमों के विरुद्ध हैं। दूसरा, अनुशासनहीनता की दूसरी स्थिति तब आती है जब विद्यार्थी, शिक्षक तथा प्राचार्य सभी को मूलों का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता, परंतु दोनों के भिन्न मूल्य होते हैं। नवीन और पुरानी पीढ़ीगत मूल्य की ओर कोई भी अपनी बात से पीछे हटना नहीं चाहता। परिणाम स्वरूप अनुशासनहीनता व्याप्त हो जाती है। परस्पर विचार विमर्श तथा तर्कसंगत बात को स्वीकार करने से यह समस्या हल की जा सकती है। शिक्षा आयोग 1964 से 66 में अनुशासनहीनता के कारणों का विश्लेषण करने के निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले हैं। पहला, युवाओं में अनिश्चित भविष्य के भय के कारण असंतोष व्याप्त है, परिणाम स्वरूप उनमें दायित्वहीनता उभर रही है। दूसरा, विद्यालयों में विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या के अनुपात में अपर्याप्त सुविधाओं के कारण अध्ययन व अधिगम परिस्थितियां प्रभावी होती हैं। तीसरा, पाठ्य सहगामी प्रवृत्तियों या यांत्रिक तरीकों से बिना पूर्व तैयारी के अकुशल आयोजन होता है। चौथा, शिक्षक विद्यार्थी संबंधों में गिरावट आ रही है। पांचवा, अनुशासनहीनता को दृढ़ता के साथ मिटाने के लिए प्रधान अध्यापकों में कल्पना शक्ति और कौशल का अभाव। छठवां, शिक्षकों की राजनीतिक व गुटबाजी अनुशासनहीनता को बढ़ावा देती है। सातवां, राजनीतिक पार्टियों या विद्यालय और कॉलेजों के कार्यकलापों में हस्तक्षेप अनुशासनहीनता को बढ़ाता है। आठवां, आम जनजीवन में अनुशासनहीनता की बढ़ती प्रवृत्ति और पौढ़ों में नागरिक चेतना का अभाव भी छात्र अनुशासनहीनता के लिए उत्तरदायी है। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि विद्यार्थी अनुशासनहीनता के कारणों में शैक्षिक, प्रशासनिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक के अलावा दो अन्य प्रमुख कारण हैं, सामाजिक व राष्ट्रीय मूल्यों का ह्रास होना तथा उचित नेतृत्व का अभाव। अनुशासनहीनता निवारण के उपाय। विद्यार्थी अनुशासनहीनता के कारणों को यदि दूर करने पर विचार करें तो स्वाभाविक है कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि इनमें से अधिकांश कारण विद्यालय से परे हैं, जिन पर विद्यालय का कोई नियंत्रण नहीं है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, मूल्यगत कारण ऐसे ही हैं जो विद्यार्थी जीवन और उसके चिंतन व व्यवहार पर निरंतर प्रभाव डालते हैं। विद्यार्थी एक सामाजिक प्राणी ही है। समाज में व्याप्त दोषों से वह कदाचित ही बच पाता है। केवल शैक्षिक व प्रशासनिक कारणों पर ही विशेष रूप से विचार कर सकते हैं। अतः समग्र रूप से विद्यार्थी अनुशासनहीनता की कल्पना ही नहीं की जा सकती। भारतीय गृह मंत्रालय के सर्वेक्षण, जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है, के अनुसार आधे से अधिक अनुशासनहीनता के कारण शैक्षिक व शिक्षा प्रशासन से संबंधित है। अतः अनुशासनहीनता के कारण निवारण के लिए हमें शैक्षिक आव्यूहों के प्रयोग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शैक्षिक साहित्य में अनुशासनहीनता के निवारण के लिए 5 आयाम सुझाए हैं। पहला, प्रतिकारी आयाम, रिट्रीब्यूटिव अप्रोच। दूसरा, दंडात्मक आयाम, विंडिकेटिव अप्रोच। तीसरा, उदाहरणात्मक आयाम, एग्जाम्पलरी अप्रोच। चौथा, सुधारात्मक आयाम, रिफॉर्मेटिव अप्रोच। तथा पांचवा, निरोधात्मक आयाम, प्रिवेंटिव अप्रोच। इन आयामों का विस्तृत वर्णन निम्नलिखित है। पहला, प्रतिकारी आयाम, रिट्रीब्यूटिव अप्रोच। इसके अंतर्गत इस विद्यार्थी के विरुद्ध प्रतिकारी कदम उठाना है जिसने विद्यालय अनुशासन के नियमों को भंग किया है। इसमें प्रायः जैसी अनुशासनहीनता की गंभीरता होती है तदनुसार ही दंडात्मक उपाय सुझाए जाते हैं, परंतु इस आयाम के भयंकर परिणाम निकल सकते हैं और विद्यार्थी को अपराधी बनाने की ओर प्रेरित कर सकते हैं। दूसरा, दंडात्मक आयाम, विंडिकेटिव अप्रोच। इस आयाम में मूल रूप से बदले की भावना होती है। इस प्रकार का आयाम विद्यालयों में नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी को नियम और कानूनों की अनिवार्यता तथा तर्कसंगतता का आभास होना ही चाहिए, परंतु साथ साथ उचित न्याय से भी उन्हें संतुष्ट करने की आवश्यकता है। तीसरा, उदाहरणात्मक आयाम, एग्जाम्पलरी अप्रोच। इस आयाम की आवश्यकता इस कारण है कि अनुशासनहीनता के लिए दंड के उदाहरण से शेष कक्षा अथवा विद्यालय के अनुशासन भंग नहीं करें, परंतु इस प्रकार के ढंग से पूर्व अनुशासनहीनता संबंधी साक्ष्य और दंड की गहनता पर विचार अवश्य किया जाना चाहिए। चौथा, सुधारात्मक आयाम, रिफॉर्मेटिव अप्रोच। इस आयाम का उद्देश्य दोषी और विद्यार्थियों को सुधारना होता है। अतः विद्यार्थी को उसके दोष का एहसास कराना तथा फिर भविष्य में इस प्रकार की कोई अनुशासनहीनता का कार्य नहीं करें, इसके लिए प्रेरित करना है। इस आयाम ने छात्रों को विद्यालय समुदाय की अपेक्षा के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर मुख्य समुदाय के साथ स्वेच्छापूर्वक कार्य करने के लिए प्रयत्न किया जाता है। पांचवा, निरोधात्मक आयाम, प्रिवेंटिव अप्रोच। यह आयाम आधुनिक अनुसंधान और विचारधारा का परिणाम है। इस आयाम का उद्देश्य उन परिस्थितियों को ही पैदा होने के पूर्व जानकर दूर करने का होता है जिनके कारण अनुशासनहीनता की परिस्थिति उत्पन्न हुई है। इस विचारधारा के चिंतकों का मानना है कि यदि सावधानी रखी जाए तथा उचित शैक्षिक पर्यावरण विद्यालय में हो तो अनुशासनहीनता की अनेक समस्याओं को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। अतः विद्यालय में सुधारात्मक व निरोधात्मक आयामों को ही अनुशासनहीनता निवारण के लिए प्रयोग में लिया जाना चाहिए। अनुशासनहीनता निवारण के साधन। शिक्षा जगत में विद्यार्थी अनुशासनहीनता के निवारण उपायों में निम्नलिखित आव्यूहों का उपयोग देखने में आया है। ब्राफी एवं एवर्टसन विद्यालयी अनुशासनहीनता के लिए अनुदेशन विधियों को मूल रूप से उत्तरदायी मानते हैं, अतः उन्होंने अनुदेशन में अनुदेशन योजना, संगठन व व्यवस्था में परिवर्तन करके शैक्षिक अनुशासन के सुधार की संतुष्टि की है। कर्मिंग्स 1980 जापानी विद्यालयों की कार्य प्रणाली के निरीक्षण के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यदि प्रत्येक कक्षा के लिए कुछ नियम बना दिए जाएं तथा छात्रों को छोटे छोटे समूहों में विभक्त कर प्रत्येक शिक्षक के नियंत्रण व मार्गदर्शन में रखा जाए तो घोषित नियमों की नियमित अनुपालन के प्रति निष्ठा बढ़ती है। उनमें नियमित आदतों के साथ साथ अच्छे संस्कार बनते हैं, जिससे अनुशासनहीनता को बहुत कुछ समाप्त कर परस्पर शिक्षक विद्यार्थी सहयोग को बढ़ाया जा सकता है। USA तथा कनाडा के विद्यालयों की अनुशासन समस्याओं पर विचार करने के लिए गठित आयोग द फी डेल्टा कप्या कमीशन ऑन डिसिप्लिन के नाम से जाना जाता है। इस आयोग ने 8 क्षेत्रों पर विचार किया है। फिर से नाम सुन लें, द फी डेल्टा कप्या कमीशन ऑन डिसिप्लिन के नाम से जाना जाता है। इस आयोग ने 8 क्षेत्रों पर विचार किया है। पहला, कि अनुशासन की समस्या के समाधान के लिए लगे व्यक्ति किस प्रकार कार्य करते हैं तथा निर्णय लेते हैं। दूसरा, कि संगठन में किस प्रकार अधिकृति और परिस्थिति का विभाजन हुआ है। तीसरा, कि किस सीमा तक विद्यार्थियों की यह अनुभूति है कि विद्यालय उनका है। चौथा, कि औपचारिक पाठ्यक्रम किस प्रकार का है तथा उसके अनुदेशन की शैली किस प्रकार की है। पांचवा, कि किस तरह विद्यालय अनुशासन के नियम बनते हैं तथा समझे जाते हैं तथा लागू किए जाते हैं। छठवां, कि किस प्रकार छात्रों की व्यक्तिगत समस्याएं स्टाफ द्वारा हल की जाती हैं। सातवां, कि अभिभावक और समुदाय के साथ विद्यालय के संबंध कैसे हैं। आठवां, कि भवन और खेल के मैदान की व्यवस्था किस प्रकार की है। अनुशासन समस्या के समाधान में व्यक्तियों यानी कि प्राचार्य और शिक्षक की शैली, निर्णय का तरीका, संगठन में विविध स्तरों पर अधिकृतियों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की स्थिति है तो दूसरी ओर छात्रों की विद्यालय के प्रति अपनेपन की भावना पर निर्भर करेगा। औपचारिक पाठ्यक्रम की उपयोगिता तथा उसका प्रभावी अनुदेशन, इसी प्रकार पाठ्य सहगामी क्रियाओं और उनकी व्यवस्था की स्थिति अनुशासन को प्रभावित करेगी। अनुशासन के नियम यदि विद्यार्थियों के सहयोग से पूर्ण व्याख्या के साथ लागू किए जाते हैं तो अनुशासनहीनता के कम अवसर आते हैं। छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान में शिक्षकों की पहल का ढंग, उनके साथ संबंध भी अनुशासन को प्रभावित करते हैं। अभिभावकों और समुदाय के साथ विद्यालयी संबंध भी प्रभावित होते हैं। समुदाय विद्यालयी सहयोग अनेक भ्रांतियों को दूर करने में सहायक होते हैं, जिनसे अनुशासन समस्या हल करने में योग मिलता है। मास्लो का आवश्यकताओं पर आधारित आयाम। मास्लो ने आवश्यकताओं को आधार मानकर छात्र अनुशासन समस्या के हल ढूंढने को का यत्न किया है। उन्होंने दो प्रकार की आवश्यकताओं को स्वीकार किया है, पहला बाह्य आवश्यकताएं तथा दूसरा आंतरिक आवश्यकताएं। जब आधारभूत आवश्यकताओं की बाह्य पर्यावरण से पूर्ति होती है तथा प्रेम यानी कि लव तथा अपनापन यानी कि बिलोंगिंगनेस व्यक्ति को मिलता है, तब वह संतुष्ट होता है और तब अनुशासनहीनता की घटनाएं नहीं होती हैं। मास्लो ने व्यक्ति की आवश्यकता की तुष्टि के लिए भी 4 क्षेत्र सुझाए हैं जिस पर विचार किया जाना चाहिए। पहला, ध्यान देना यानी कि अटेंशन, व्यक्तियों को यह आभास कराना कि वे समूह, संगठन व अन्य उसे जानते हैं। दूसरा, स्वीकार करना यानी कि एक्सेप्टेंस, कि वह अपना अधिकार है कि आप यहाँ हमारे साथ हैं। तीसरा, स्वीकृति देना यानी कि अप्रूवल, कि मुझे यह तुम्हारे बारे में पसंद है। तथा चौथा, स्नेह देना यानी कि अफेक्शन, कि मुझे तुम पसंद हो। इस व्यवहार से व्यक्ति संतुष्ट रहता है और स्वाभाविक है कि संतुष्ट व्यक्ति का व्यवहार समूह की अपेक्षानुरूप होता है। अहम विश्लेषण आयाम। इस अहम विश्लेषण आयाम के अनुसार अहम यानी कि ईगो की 3 परिस्थितियां हैं। प्रथम, संस्थिति अभिभावक के अहम की होती है। इस स्थिति में विद्यार्थी बालक ने अपने माँ बाप से जो सीखा है उसके अनुरूप आचरण करता है। इसकी पुनः 3 प्रकार की स्थितियाँ होती हैं जो अभिभावकों के व्यवहार का प्रतिनिधित्व करती हैं। पहला, प्रभुत्ववादी अभिभावक, दूसरा आलोचक अभिभावक तथा तीसरा प्यार और स्नेह करने वाला अभिभावक। प्रथम संस्थिति में बालक अभिभावकों की भांति मांग या अपेक्षा के परिणाम स्वरूप बिना अधिक चिंतन के निराशा असंतोष, क्रोध या प्रेम की अभिव्यक्ति करता है। यह उसके द्वारा तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करने की स्थिति है। दूसरी स्थिति में वह बालक की तरह से है, जो जी में आता है अभिव्यक्त कर देता है। तीसरी स्थिति पौढ़े की है। इस स्थिति में वह हर स्थिति पर तर्कसंगत तरीके से सोचकर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। अहम का विश्लेषण द्वारा बालक को प्रौढ़ अभिभावक की भूमिका के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इस प्रशिक्षण के बाद बालक हर स्थिति में तर्कपूर्ण निर्णय के बाद ही अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। यह व्यवहार कहीं अधिक उपयुक्त और समूह की अपेक्षा के अनुरूप होता है। प्रभावी अध्यापक प्रशिक्षण। थॉमस गार्डन 1974 की मान्यता है कि यदि अध्यापक को प्रभावी शिक्षक के रूप में तैयार किया जाए तो विद्यालय अनुशासन की समस्या का समाधान खोजा जा सकता है। गार्डन की मान्यता के अनुसार प्रारंभ में शिक्षक अनुशासन पर कम समय देता है, वह दमननात्मक तथा शक्ति आधारित विधियों अनुशासन बनाए रखने के लिए काम में लाता है। बालकों को शर्मिंदा करके या उनके दोष निकालकर वह कक्षा में नियंत्रण रखता है। इससे छात्रों में शिक्षक के प्रति विद्रोह अथवा विरोध का स्वर उठ खड़ा होता है। उचित यह है कि निम्नलिखित चार परिस्थितियों के लिए प्रशिक्षित हों। ये परिस्थितियां इस प्रकार हैं: पहला, विद्यार्थियों की बात को मनोयोग से सुनना। दूसरा, संप्रेषण कला में प्रवीणता। तीसरा, समस्याओं की चुनौतियों को स्वीकार करना। तथा चौथा, समझौता करना। गार्डन का विश्वास है कि इस प्रकार के प्रशिक्षण के बाद शिक्षक प्रभावी ढंग से कक्षा में अनुशासन बनाए रख सकता है। पुरस्कार एवं दंड। विद्यालयी अनुशासन बनाए रखने के लिए बहुत पुराने समय से पुरस्कार और दंड आयाम को अपनाया जाता है। यहाँ अच्छे कार्य करने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया जाता है, वहाँ दोषपूर्ण कार्यों के लिए दंड भी दिया जाता है। इस आयाम की पृष्ठभूमि में यह अवधारणा है कि दंड के भय से छात्र अनुशासनहीनता का कार्य नहीं करेंगे और पुरस्कार की चाह में अच्छे कार्य ही करने के लिए उत्प्रेरित होंगे। प्रायः पुरस्कार में विभिन्न प्रकार की भौतिक वस्तुएं तथा मैडम कप, ट्रॉफी आदि दी जाती है तथा अभौतिक पुरस्कारों में समूह के समक्ष प्रशस्ति पत्र, प्रश्न पत्र, प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया जाता है। शिक्षाविदों ने इस द्वितीय प्रकार के पुरस्कारों के पक्ष में अधिक समर्थन व्यक्त किया है, क्योंकि इन पुरस्कारों का आंतरिक मूल्य अधिक है तथा इसमें समूह के मिलने वाली प्रेरणा छिपी है। अनुशासन बनाए रखने के लिए दंड के संबंध में अधिकांश शिक्षा शास्त्री पक्ष में नहीं है। वे अनुशासनहीनता के कारणों की खोज कर उनके माध्यम से अनुशासनहीनता दूर करने की अधिक उपयुक्त समझते हैं। फिर भी यदि दंड दिया जाए तो वह यांत्रिक न हो और काफी चिंतन और परामर्श के आधार पर दिया जाए, अन्यथा छात्र में कुंठा उत्पन्न होने का भय है जो जीवन पर्यंत उसके व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। दंड क्रोध और बदले की भावना से नहीं दिया जाए। छात्र को लज्जा अथवा नीचा दिखाने वाला न हो और यदा कदा हो तथा सुधारात्मक हो। विद्यालय उत्तम अनुशासन का आशय, मीनिंग ऑफ बेस्ट डिसिप्लिन। वस्तुतः विद्यालय श्रेष्ठ अनुशासन वह है जहाँ अनुशासनहीनता के कारणों को दूर कर दिया गया है। इसमें मुख्य रूप से प्रधानाध्यापक नेतृत्व व शिक्षकों का विद्यालयी कार्यकलापों व लक्ष्यों के प्रति समर्पित है और सकारात्मक व्यवहार होता है। यहाँ दोनों सेवा और समर्पण की भावना से मिलकर कार्य करते हैं। एक श्रेष्ठ विद्यालयी अनुशासन के लक्षण वे हो सकते हैं जहाँ विद्यालय के लक्ष्य स्पष्ट हैं। उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नेतृत्व व समूह शिक्षक विद्यार्थी समर्पित भाव से भाग लेते हैं। शिक्षक निष्ठा से पाठ तैयार करते हैं तथा प्रभावी पाठन विधियों का प्रयोग करते हैं, जिससे शिक्षक से विद्यार्थी परस्पर सहयोग करते हैं। ये विधियां विद्यार्थियों को पाठ के विकास में सम्मिलित ही नहीं करती, वरन उसमें उनकी भागीदारी भी सम्मिलित करती है। यह आयाम छात्रों के लिए प्रेरक होता है, जिनसे उनमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। शिक्षक विद्यार्थियों की समस्याओं को निकटता के कारण जानता है तथा उनकी समस्याओं को परस्पर विश्वास और सौहार्द से हल करता है। शिक्षक परस्पर समूह भावना से कार्य करते हैं, इसमें वे विद्यालय में श्रेष्ठ परंपराओं का सृजन करते हैं। पाठ्य सहगामी प्रवृत्तियों के माध्यम से विद्यार्थियों को विविध प्रवृत्तियों में लगाया जाता है, जिससे व्यक्तित्व सृजनता तथा विविध गुणों का विकास होता है। विद्यालय में पर्याप्त भावना भवन, खेल के मैदान, पुस्तकालय व उपयुक्त संसाधनों की व्यवस्था की जाती है। इन सब परिस्थितियों के होने पर यदि कभी अनुशासनहीनता की समस्याएं होती हैं, तब तर्कसंगत नीति व विद्यार्थियों को उसके दोषों की अनुभूति कराकर परस्पर सहमति से हल की जाती है। विद्यालय अनुशासन और प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक विद्यालय का केंद्र बिंदु है। हल्पिन तथा क्राफ्ट प्रधानाध्यापक के सकारात्मक नेतृत्व को अत्यंत महत्व देते हैं। विद्यालय के श्रेष्ठ पर्यावरण के निर्माण में उसकी अहम भूमिका होती है। वही विद्यालय की नीतियों को तय करता है तथा नेतृत्व देता है। अतः श्रेष्ठ विद्यालयी अनुशासन के लिए वह शिक्षक व विद्यार्थियों के सहयोग से नीति निर्माण करके शिक्षकों के साथ सहयोग की भावना से कार्य करके श्रेष्ठ परंपराओं की स्थापना करके पाठ्य प्रवृत्तियों का प्रभावी संचालन करके पाठ्य सहगामी प्रवृत्तियों का नियमित आयोजन करके तथा विद्यालय के उपलब्ध संसाधनों को यानी कि भौतिक व मानवीय प्रभावी ढंग से नियोजित करके अनुशासन रहित विद्यालय पर्यावरण को जन्म दे सकता है। शिक्षक और विद्यालयी अनुशासन। शिक्षक विद्यालयी लक्ष्यों कार्यक्रमों की क्रियान्विति का मूल आधार है, अतः अनुशासन बनाए रखने में भी उसकी अहम भूमिका है। विद्यालयी अनुशासनहीनता की सर्वाधिक घटनाएं शैक्षिक कारणों से ही होती हैं, जिसके लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शिक्षक ही उत्तरदायी होता है। शिक्षक पाठ्यक्रम की अच्छी तैयारी कर प्रभावी कक्षा अध्यापन कर विद्यार्थियों पर उनकी व्यक्तिगत समस्याओं का उचित ध्यान देकर कक्षा समस्याओं को विवेक एवं कौशल से हल करके तथा अपने अधीन छात्रों की व्यक्तिगत क्षमताओं के विकास के लिए व्यक्तिगत ध्यान देकर विद्यालयी अनुशासन की समस्याओं को बहुत कुछ कम करने में योगदान दे सकता है। अनुशासन और जनतांत्रिक मूल्य। शिक्षा प्रशासन में शनै शनै आधिकारिक मूल्यों के स्थान पर जनतांत्रिक मूल्यों को स्वीकार किया जाने लगा है। अस्तु अनुशासन बनाए रखने के लिए भी जनतांत्रिक आयामों व शैलियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अनुशासन में जनतांत्रिक मूल्यों का अर्थ यह होगा कि अनुशासन संबंधी नीतियां नियम शिक्षक और विद्यार्थियों के सहयोग से बने। शिक्षक कार्य पर्यवेक्षण से लेकर विद्यार्थी कार्यकलापों का पर्यवेक्षण सहयोगात्मक तरीके से हो। स्वतंत्र अभिव्यक्ति सहयोग सहकार समूह भावना व्यक्तिगत सम्मान मानवीय मूल्य आदि विद्यालयी नीतियों से लेकर क्रियान्विति तक परिलक्षित होने चाहिए। विद्यार्थी स्वशासन यानी कि विद्यार्थी परिषद आत्मानुशासन आत्मनियंत्रण आत्मनिर्णय तथा जन कल्याण जनतांत्रिक मूल्यों के सन्निकट है। अतः विद्यार्थियों को स्वयं पर अनुशासन के स्व प्रशासन व स्व निर्णय लेने को अवसर विद्यालय कार्यकलापों में मिलने चाहिए। अतः विद्यालय व्यवस्था में विद्यालय पार्लियामेंट विद्यालय यूनियन विद्यार्थी परिषद विद्यार्थी सरकार का प्रावधान करना चाहिए, परंतु यह प्रारंभ करने से पहले छात्रों को जनतांत्रिक मूल्यों का ज्ञान अधिकार के साथ साथ कर्तव्य का ज्ञान अधिकृतियों का उचित सम्मान इनके उद्देश्य आदि से परिचित व तदर्थ उनका अनुस्थापन किया जाना चाहिए। स्वनिर्णय के अवसर स्वनिर्भरता स्वनिर्देशन परस्पर सहयोग व सहकार के अवसर विद्यार्थियों के नेतृत्व का विकास करेंगे। इससे उनमें नैतिक बल कार्य करने का विश्वास कानून और नियमों के प्रति प्रतिबद्धता का विकास होगा। विद्यार्थी संगठनों को विभिन्न सांस्कृतिक व धार्मिक उत्सव कैंप शैक्षिक भ्रमण विशिष्ट दिवस वार्षिक उत्सव पाठ्य सहगामी प्रवृत्तियों प्रदर्शनियों विद्यालयी संपत्तियों का संरक्षण वृक्षारोपण बाल उद्यान का रख रखाव जैसे अनेक कार्यों के आयोजन का दायित्व सौंपा जा सकता है। इस प्रकार के विद्यार्थी सरकार या अन्य प्रकार के विद्यार्थी संगठन के माध्यम से विद्यालय भावना का विकास होगा। विद्यालय कार्यक्रमों में विद्यार्थियों की रुचि बढ़ेगी, विद्यार्थी सहयोग भी अधिकाधिक बढ़ेगा, जिससे विद्यालयी अनुशासनहीनता की घटनाओं को कम करने की स्थिति पैदा की जा सकेगी। अधिगम अभ्यास लर्निंग एक्सरसाइज। पहला, विद्यालय अनुशासन का अर्थ बताइए, अनुशासन के प्रकार बताइए और अनुशासनहीनता के कारण भी स्पष्ट कीजिए। दूसरा, अनुशासनहीनता के निवारण के उपयोग बताइए, मास्लो की आवश्यकता सिद्धांत की अनुशासनहीनता निवारण में भूमिका बताइए। तीसरा, उत्तम विद्यालय अनुशासन का अर्थ समझाइए, विद्यालय अनुशासन में प्राचार्य की भूमिका बताइए। चौथा, शिक्षा नियंत्रण का अर्थ समझाइए, नियंत्रण करने वाले अभिक्रमकों का उल्लेख कीजिए। पांचवा, शिक्षा नियंत्रण के प्रकार बताइए, आंतरिक नियंत्रण में प्राचार्य की भूमिका का विवरण दीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। पहला, अनुशासन का शाब्दिक अर्थ बताइए। दूसरा, विद्यालय में अनुशासन की आवश्यकता बताइए। तीसरा, अनुशासनहीनता के कारण बताइए। चौथा, शिक्षा नियंत्रण का अर्थ समझाइए। पांचवा, शिक्षा नियंत्रण के प्रकार बताइए। सत्य असत्य क्वेश्चन ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। पहला, सामाजिक मूल्यों के अनुरूप आचरण को अनुशासन कहते हैं, सत्य या असत्य। दूसरा, विद्यालयी नियमों के अनुसार व्यवहार को विद्यालयी अनुशासन कहते हैं, सत्य या असत्य। तीसरा, अनुशासन के तीन प्रकार होते हैं, सत्य या असत्य। चौथा, आंतरिक नियंत्रण में प्राचार्य की भूमिका अहम होती है, सत्य या असत्य। पांचवा, बाह्य नियंत्रण में केंद्र तथा राज्य सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, सत्य या असत्य। कुंजी, पहले के लिए सत्य, दूसरे के लिए सत्य, तीसरे के लिए सत्य, चौथे के लिए सत्य और पांचवें के लिए भी सत्य। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कंप्लीशन टाइप क्वेश्चन। पहला, विद्यालय कार्यकलापों के संचालन में रिक्त स्थान की आवश्यकता होती है। दूसरा, मूल्यों तथा नियमानुसार आचरण को रिक्त स्थान कहते हैं। तीसरा, अनुशासन का वर्गीकरण रिक्त स्थान प्रकार से किया है। चौथा, प्राचार्य की भूमिका रिक्त स्थान नियंत्रण में अहम होती है। पांचवा, राज्य सरकार की भूमिका रिक्त स्थान नियंत्रण में अधिक होती है। कुंजी, विद्यालयी अनुशासन पहले के लिए, दूसरे के लिए अनुशासन, तीसरे के लिए तीन, चौथे के लिए आंतरिक, पांचवें के लिए बाह्य। मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, अनुशासन का अर्थ होता है अ, मूल्यों का अनुसरण, ब, नियमों का अनुपालन, स, व्यवहार का समाजीकरण, द, उपरोक्त सभी। दूसरा, अनुशासन का रूप है अ, दमनात्मक, ब, प्रभावात्मक, स, मुक्तियात्मक, द, उपरोक्त सभी। तीसरा, अनुशासनहीनता के निवारण का आयाम है अ, दंडात्मक आयाम, ब, सुधारात्मक आयाम, स, उदारात्मक आयाम, द, उपरोक्त सभी। चौथा, आवश्यकताओं की तुष्टि का क्षेत्र है अ, ध्यान देना, ब, स्वीकार करना, स, स्नेह देना, द, उपरोक्त सभी। पांचवा, अनुशासनहीनता का मुख्य कारण है अ, छात्रों में असंतोष, ब, छात्रों की वृद्धि, स, अध्ययन में छात्रों की रुचि का अभाव, द, उपरोक्त सभी। छठवा, मास्लो की आवश्यकता का स्वरूप है अ, बाह्य आवश्यकताएं, ब, आंतरिक आवश्यकताएं, स, उपरोक्त दोनों ही, द, उपरोक्त कोई नहीं। कुंजी, पहले के लिए द, दूसरे के लिए द, तीसरे के लिए द, चौथे के लिए द, पांचवें के लिए द और छठवें के लिए सात।